अर्पिता को खुश देखकर अभिमन्यु कुछ नहीं बोला। उसने अपने मन में कहा, हम खुश होने का दिखावा करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। हमारे ऊपर पूरे राजवंशी परिवार की जिम्मेदारियां हैं। हमारे लिए ये सगाई और ये शादी दोनों ही बहुत जरूरी हैं। अभिमन्यु ये सारी बातें सोच ही रहा था कि अर्पिता ने अभिमन्यु के बालों को अपने हाथों से ठीक करते हुए कहा, हो गए हमारे भाई साहब बिल्कुल रेडी, और आप तो सच में इतने हैंडसम लग रहे हैं कि भाभी साहबा तो बस आपको देखते ही रह जाएंगी। अर्पिता इतना बोलकर मुस्कुराने लगी। अभिमन्यु भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। वे दोनों एक साथ कमरे से बाहर निकल आए। माँ साहब ने जैसे ही अभिमन्यु को देखा, उन्होंने 500 के नोटों की एक गड्डी उठाई और उसे अभिमन्यु के सिर के चारों ओर घुमाते हुए कहा, हमारे बेटे को किसी की बुरी नज़र ना लगे। इतना बोलकर उन्होंने वो 500 के नोटों की गड्डी सामने खड़े एक नौकर को देते हुए कहा, ये गरीबों में बंटवा देना। और सारी गाड़ियां तैयार है ना? उस नौकर ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी रानी साहबा, सब कुछ बिल्कुल तैयार है। रानी साहब ने हुक्म देते हुए कहा, तो फिर ठीक है, चलिए चलते हैं। राजमहल में मौजूद सभी लोग वहां से निकलने के लिए तैयार हो गए। उसी समय इप्सिता के पिता अपनी पत्नी के पास आकर बोले, सुहासिनी जी, रानी साहबा कुंवर साहब के साथ राजमहल से निकल चुकी हैं। वे लोग बस किसी भी वक्त यहां पहुंचने वाले हैं। आप जाकर देखिए इप्सिता तैयार हुई है या नहीं। इप्सिता अपने कमरे में थी। उसने बाथरूम पहना हुआ था और चुपचाप आराम से चेयर पर बैठी थी। नंदिनी उसका मेकअप कर रही थी। सुहासिनी जी जैसे ही इप्सिता के कमरे में आईं, उन्होंने हड़बड़ाते हुए कहा, इप्सिता, आप अभी तक रेडी नहीं हुई हैं। किसी भी समय राजमहल के सब लोग यहां पहुंच सकते हैं। और आप नंदिनी, आपने तो कहा था कि आप इप्सिता को रेडी कर लेंगी, और अभी तक आपने इप्सिता का मेकअप ही फिनिश नहीं किया है। सुहासिनी जी खुद काले रंग की सुंदर सी नेट साड़ी पहनकर रेडी हो चुकी थीं, और इप्सिता का चेहरा उन्होंने अभी तक नहीं देखा था। नंदिनी बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हुए बोली, चिल आंटी, ऑलमोस्ट इप्सिता का पूरा मेकअप हो चुका है, बस उसे लहंगा और ज्वेलरी ही पहननी है। और मुझे क्या, मुझे तो रेडी होने में आधा घंटा भी नहीं लगेगा, मैं फटाफट रेडी हो जाऊंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सुहासिनी जी ने नंदिनी की बात सुनकर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, आप नहीं जानती, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, और रानी साहबा को तो किसी भी चीज़ में लेट होना पसंद नहीं है। और नंदिनी, आप अभी तक इप्सिता को रेडी नहीं करवा पाई हैं, इसलिए हमने कहा था कि हम मेकअप आर्टिस्ट को बुला लेते हैं, लेकिन आपने मना कर दिया, और देखिए अब कितना लेट हो रहा है। सुहासिनी जी अपनी बात बोल ही रही थी कि तभी इप्सिता अपनी जगह पर से उठकर खड़ी हुई। जैसे ही उसने अपना चेहरा सुहासिनी जी की तरफ घुमाया, सुहासिनी जी उसे देखती ही रह गई। इप्सिता सुहासिनी जी के सामने खड़े होते हुए बोली, मम्मी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? हमने आपसे कहा ना, हम लेट नहीं होंगे, और वैसे भी हमारा पूरा मेकअप हो गया है। सुहासिनी जी इप्सिता के चेहरे की तरफ देखकर अपने मन में बोली, वैसे नंदिनी, आपने इप्सिता का मेकअप बहुत अच्छा किया है। सुहासिनी जी नंदिनी की तरफ देखने लगी। नंदिनी ने अपने मन में कहा, ये इप्सिता की माँ मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या इन्हें मेरा किया हुआ मेकअप पसंद नहीं आया? नंदिनी मन ही मन ये बात सोच रही थी, तभी सुहासिनी जी ने काफी स्ट्रिक्टली कहा, इप्सिता, नंदिनी, आप दोनों के पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए जल्द से जल्द रेडी हो जाइए। नंदिनी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। सुहासिनी जी के जाते ही उसने दरवाजा अंदर से लॉक करते हुए कहा, इप्सिता, मैं चेंज करने जा रही हूँ, तुम भी अपना ड्रेस चेंज कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें ज्वेलरी पहना दूंगी। इतना बोलकर नंदिनी ने अपना बैकलेस गाउन लिया और उसे लेकर चेंज करने के लिए चली गई। इप्सिता भी अपने उस हैवी से लहंगे की तरफ देखते हुए बोली, ओ गॉड, मैं इस लहंगे को कैसे कैरी करूंगी, ये तो काफी ज्यादा हैवी लग रहा है। इतना बोलकर इप्सिता ने उस लहंगे को उठाया, उसका वजन काफी ज्यादा था। इप्सिता ने अपना बाथरूम उतारा और उसने लहंगे के नीचे नीले रंग की डेनिम जीन्स पहनी और उसके ऊपर लहंगा पहन लिया। उसने लहंगे का ब्लाउज बंद करने की कोशिश की, पर उस ब्लाउज का हुक बंद नहीं हो रहा था। इप्सिता ने बाथरूम की तरफ देखकर आवाज लगाते हुए कहा, नंदिनी, प्लीज जल्दी बाहर आओ, आई नीड योर हेल्प। नंदिनी ने वॉशरूम के अंदर से ही आवाज लगाते हुए कहा, बस दो मिनट रुक जाओ, मैं आ रही हूँ। इप्सिता उस हैवी लहंगे और चोली को बंद किए बिना ही वहीं बेड पर बैठ गई। उसने अपने मन में कहा, पता नहीं मिस्टर अभिमन्यु की माँ को इतना हैवी लहंगा भिजवाने की क्या जरूरत थी, इसे तो मैं ठीक से संभाल भी नहीं पा रही, चलूंगी कैसे। इप्सिता ये सोच ही रही थी कि नंदिनी अपना रॉयल ब्लू कलर का बैकलेस गाउन पहनकर वॉशरूम से बाहर निकली। उसे देखकर इप्सिता ने मुस्कुराते हुए कहा,
वाह नंदिनी, ये गाउन तो तुम पर काफी ज्यादा सूट कर रहा है। नंदिनी ने अपने गाउन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी दोस्त है ही इतनी हॉट और सेक्सी कि उसके ऊपर तो सब कुछ अच्छा लगता है। वैसे मुझे ये बता, तूने मुझे आवाज लगाकर क्यों बुलाया था? क्या हेल्प चाहिए थी तुझे? इप्सिता उठकर खनी हुई और उसने कहा, पता नहीं क्यों इस ब्लाउज का हुक मुझे लग ही नहीं रहा है, प्लीज इसे लगाने में मेरी हेल्प कर दे। नंदिनी ने इप्सिता के लहंगे के ब्लाउज की तरफ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं आराम से इसे लगा देती हूँ। नंदिनी ने इप्सिता के ब्लाउज का हुक लगाकर कहा, हो गया, अब तुम यहीं पर आराम से बैठो, जब तक मैं भी अपना फटाफट से मेकअप कर लेती हूँ, वरना मैं ऐसे ही भूत बनकर अपने जीजू के सामने चली जाऊंगी। इप्सिता मुस्कुराते हुए बोली, इस लहंगे का दुपट्टा कैसे कैरी करना है? नंदिनी ने कहा, मैं कर दूंगी, लेकिन अभी तुम शांत रहो और मुझे डिस्टर्ब मत करना। इतना बोलकर नंदिनी अपना मेकअप करने में बिजी हो गई। इप्सिता उठकर अपने कमरे की खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। नंदिनी ने इप्सिता को खिड़की से बाहर झांकते देखकर उसकी टांग खींचते हुए कहा, मुझे नहीं लगता तुझे वहां से जीजू दिखने वाले हैं, और वैसे भी अभी उन्हें आने में थोड़ा टाइम है, थोड़ा तो वेट कर ले। इप्सिता ने उसे घूरते हुए कहा, जस्ट शट अप, हम किसी का वेट नहीं कर रहे हैं। नंदिनी इप्सिता की बात सुनकर हंसने लगी और उसने जल्दी जल्दी अपना मेकअप करना कंटिन्यू किया। नंदिनी का मेकअप जैसे ही हुआ उसने खुद को शीशे में देखकर कहा, वाह मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपना मेकअप तुमसे भी अच्छा कर लिया है, कहीं जीजू को तुम्हारी जगह पर मैं ही ना पसंद आ जाऊं। इप्सिता उसकी बात सुनकर ना में अपना सिर हिलाते हुए बोली, बिल्कुल पागल हो तुम। नंदिनी ने अपने बालों को कर्ल करते हुए कहा, वैसे ईशु मैं पहली बार जीजू से मिलूंगी, तो क्या मुझे उन्हें कोई गिफ्ट देना चाहिए? क्योंकि मैं जल्दबाजी में तो यहाँ आई थी, इसीलिए उनके लिए कोई गिफ्ट तो ले नहीं पाई। इप्सिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है तुझे किसी को कुछ गिफ्ट देने की। नंदिनी ने इप्सिता को घूरते हुए कहा, क्यों क्यों नहीं दे सकती मैं उन्हें गिफ्ट? इप्सिता ने नंदिनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी इप्सिता ने अपनी पीठ के पीछे हाथ लगाते हुए कहा, यार नंदिनी ये ठीक तो लग रहा है ना, और अभी दुपट्टा भी पिन कर दो। नंदिनी ने उसके लहंगे का दुपट्टा ठीक से लगाते हुए कहा, ये हो गया, देख कितना सुंदर लग रहा है, और अब ठीक है ना? इप्सिता ने ना में अपना सिर हिलाया और वो थोड़ा कसमसाते हुए बोली, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ये कंफर्टेबल नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा हैवी है। नंदिनी ने उसके पूरे लुक को ध्यान से देखते हुए कहा, रॉयल फैमिली का भेजा हुआ लहंगा इतना हैवी तो होगा ही, सब कुछ ठीक है, बस तो कुछ ज्यादा ही नर्वस हो रही है।
नंदिनी की बात सुनकर फिर इप्सिता ने भी कुछ नहीं कहा। अब वो पूरी तरह रेडी होकर अपने फाइनल लुक को शीशे में देख रही थी। वो उस पर्पल कलर के गोल्डन वर्क वाले हैवी लहंगे में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। नंदिनी ने उसका मेकअप भी एकदम परफेक्ट किया था। नंदिनी अब उसे शीशे के सामने बिठाकर एक एक करके वो सारी ज्वेलरी पहनाने लगी। वो सारी ज्वेलरी भी इप्सिता के होने वाले ससुराल से ही आई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगी और खानदानी ज्वेलरी थी, जो कि आज तक इप्सिता और नंदिनी दोनों ने ही पहले कभी नहीं देखी थी। क्रमशः